मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 9 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के लिए मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुना है और सच पूछिए तो हम सबकी अब तक जो सोच रही है कुछ खास मुद्दे को लेकर के या कुछ खास मुद्दों को लेकर के, उन्हीं में से एक मुद्दा मैंने उठाया है और यूं कह लीजिए कि जरा उस सोच की जांच पड़ताल करने की कोशिश की है और मैं चाहूंगा कि मेरी इस जांच पड़ताल में प्लीज आप सब भी शामिल हों। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने मुद्दा चुना है, ये मुद्दा मैंने बैठे ठाले कहीं भी अचानक ध्यान में आया और चुन नहीं लिया है, बल्कि सच पूछे तो यह मुद्दा मैंने मास मीडिया से उठाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाया है। मास मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मित्रों, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है ना। जो टेलीविजन है, टेलीविजन हर जगह पहुंच रहा है, हर वर्ग के लोग देख रहे हैं और पूरी दुनिया में, मतलब ये नहीं कि भारत का टेलीविजन है, भारत का चैनल है तो सिर्फ भारत तक सीमित है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसलिए एक मुद्दा मैंने वहीं से उठाया है और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा शायद किसी को मुद्दा ही न लगे। इनफैक्ट सच पूछे तो इसे तो प्रशंसा के भाव से देखा जाएगा। जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूं, मैं जानबूझ करके अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी आपके अंदर जरा उत्सुकता पैदा हो जाए और जब उत्सुकता पैदा हो जाती है ना तो सच पूछिए तो उसे सुनने में भी आनंद आता है। फ्रेंड्स, आइए अब मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा और मैं अब मुद्दे की बात करता हूं। आप लोगों ने शायद देखा हो वह प्रोग्राम या अभी भी देख रहे हो, प्रोग्राम चल रहा है टीवी चैनल पर, आता है एक प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, जबरदस्त डांस कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा, गाने भी गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, गजब की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। दांतों तले उंगली दबा लेनी पड़ती है मित्रों, और कम से और कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी होता है कि अरे हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, अगर इन्हें सही ढंग से स्टेज मिल सका तो आगे जाकर के पता नहीं क्या चमत्कार कर जाएंगे, राइट। हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी ने देखा हो। मित्रों, मैं ये तो नहीं अभी ध्यान दे पाया हूं कि मैं जिस लड़के की बात करने जा रहा हूं वो किस क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि उसका उस छोटा सा बच्चा है और बड़ा प्रतिभाशाली है। उसका जो मकान है वो बांस का बना हुआ है, बांस से बना हुआ उसका छोटा सा घर है, और जब वो स्टेज पर आया और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जब उसकी प्रशंसा की गई और उससे पूछा गया कि तुम आगे जाकर के क्या करोगे, मतलब इनाम जीतोगे और पैसा कमाओगे, नाम कमाओगे तो आगे जाकर के तुम क्या करोगे, तो उसने जवाब दिया कि हमारा घर ये छोटा सा है और मेरे पिताजी दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये काम करूंगा कि अपने पिताजी का काम करना बंद करवा दूंगा। मित्रों, जैसे ही वो ये बात कहता है तो जो जजेस का पैनल बैठा हुआ है वो बिल्कुल दंग रह जाता है, तालियां बजाकर उसके इस वक्तव्य का स्वागत करता है, और उसमें जो एक जज हैं शिल्पा शेट्टी, वो ये वक्तव्य देती हैं कि इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी सोच, और आंखें भी डबडबा आती हैं, उनकी ही नहीं बल्कि जो पैनल्स में और भी जजेस बैठे हुए थे उनकी भी, और सच पूछिए तो तात्कालिक रूप में तो बहुत से दर्शकों की भी आंखें डबडबाई आई होंगी यह वक्तव्य सुनकर उस छोटे से बच्चे का, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। वास्तव में एक छोटा सा बच्चा अगर अपने पिता के प्रति इतनी जबरदस्त संवेदना रख रहा है, जुड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, सुबह से लेकर के रात तक लगातार जूझ रहे हैं और फिर घर चल रहा है, तो डेफिनेटली वो छोटा सा बच्चा अभी से इन तकलीफों को, इन संघर्षों को महसूस कर रहा है, तो उसे ये लग रहा है, और बहुत अच्छी बात है, और हमारी भारतीय परंपरा भी रही है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिता को मैं सुख दूंगा। अब सुख देने का आधार क्या है कि सीधी सी बात है कि वो ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं उन्हें ये मेहनत नहीं करने दूंगा और उनके बदले मैं करूंगा और जो भी मैं घर चलाऊंगा और उनको जो भी चाहिए मैं ला करके दूंगा, मैं इतना सक्षम बनूंगा। तो अगर इसके सकारात्मक बिंदु देखें तो बहुत से सकारात्मक बिंदु हैं और बहुत ही स्वागत योग्य हैं। कोई भी बच्चा, संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह की भावना रखती है तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में ज्यादातर बच्चे इस तरह की भावनाएं रखते ही है। कुछ लोग अपवाद स्वरूप हम झगड़े तकरार और विवाद ये सब देखते हैं, लेकिन वो हमारी मुख्य धारा की बातें नहीं है, है ना। मुख्य धारा की बात तो यही है जो ये बच्चा कह रहा है, तभी तो वो बच्चा कह पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में संस्कार के रूप में मुख्य धारा की चीजें ही मौजूद हैं। अब मैं थोड़ी सी इसी की मित्रों चीरफाड़ करने जा रहा हूं जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने तरीके से इस बिंदु पर सोचें। नो डाउट कि जो लड़के की भावना है वो बहुत स्वागत योग्य है, पूजनीय है, मैं उस बच्चे की प्रशंसा करना चाहूंगा, उसे अपने सीने से लगाना चाहूंगा डेफिनेटली, और ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन मेरी जो चिंता है कि बच्चे को अपने पिता के जो काम करने की यह जद्दोजहद है या जो संघर्ष है वह तकलीफ क्यों लगती है, बस मेरी जो चिंता की बात है वो ये, उसको ये तकलीफ क्यों लग रही है। मुझे ऐसा लगता है मित्रों, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, कि जो काम करना होता है वह तो प्रिविलेज होता है, वह एक विशेषाधिकार होता है, चाहे आप कोई भी काम कीजिए। मैं काम की श्रेणियों पर बिल्कुल आपको पूरे मन से कह रहा हूं कि विश्वास नहीं करता, काम की श्रेणियों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी जो काम कर रहा है उसकी जरूरत इस धरती पर रहने वाले प्राणी जगत को है, और अगर उसकी जरूरत नहीं होगी तो उस काम की कोई उपयोगिता ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, उसको कौन काम देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो भी चीज हमारे लिए जरूरी है, फिर चाहे उसे कोई भी करे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वह स्वागत योग्य है। हमें ऐसा क्यों लगता है मित्रों कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, इन तकलीफों का समाधान एकमात्र यह है कि उन्हें काम करने से रोक दिया जाए, यानी कि आप घर में बैठिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। मित्रों क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कर देना, मतलब ये मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं और सच पूछे तो विचार विमर्श के लिए ही रख रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी काम करते रहने वाले व्यक्ति से उसके काम करने के अधिकार को छीन लेना उसकी योग्यता को नकार देना है? क्या आपको नहीं लगता कि योग्यता तो चलिए एक बात है कि उसकी गरिमा को नकार देना है, क्योंकि जो योग्यता है काम करने की, जो क्षमता है, कहीं ना कहीं गरिमा से तो जुड़ी हुई ही है। हम अगर किसी व्यक्ति को उठा करके जब किसी बहुत बड़ी सजा के तहत नजरबंद कर देते हैं, नजरबंद कर देने का मतलब है तुम अब इस कमरे में रहो, यहीं रहो, तुम्हारे चारों तरफ पहरा है, तुम यहां से निकल नहीं सकते, और हम उसे कोई काम नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति खुश रह सकेगा? सोच करके देखिए, जेल में बंद कर दिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत वो काम करते रहते हैं, तो उनको काम न दिया जाए बाई दिवे और जेल में बंद कर दिया जाए और खाने के लिए सारी चीजें उनको उपलब्ध करा दी जाए, तो फिर तो ये बहुत बड़ा इनाम हो गया, फिर तो सजा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो काम करते थे उस समय वो सजा थी। काम करना अगर सजा है तो काम से मुक्त कर देना उस सजा से मुक्त कर देना है। तो मित्रों ये जो एक फ्यूडल माइंड हम सब के अंदर आ गया है, वो बच्चा भी उसी वातावरण में पला बढ़ा है, एक फ्यूडल माइंड, एक सामंतवादी विचार, सामंतवादी संस्कृति जो ये कहती है कि नहीं, काम करना सही मायने में घटिया काम है, और अगर वो काम शारीरिक है तब तो और भी ज्यादा घटिया है। और आप देखिए कि इस सोच ने शुरू से लेकर के आखिरी तक और अब तक भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है, और आगे भी यह सोच भारत का मुझे लगता है कि नुकसान करते रहेंगे। मित्रों अपने अनुभव की ही मैं बात बता रहा हूं और आप सबके भी अनुभव होंगे। बहुत हम बेरोजगारी की बात करते हैं, सच पूछिए तो काम करने वाले मिलते नहीं हैं। जरा सा भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है वो श्रम को हेय दृष्टि से देखने लगता है, उसे काम की बात कह दीजिए जिसमें कि थोड़ी से शरीर की जरूरत होगी तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसका अपमान कर दिया गया हो, वह उसे अपना अपमान समझता है कि इसने मुझे कह कैसे दिया, मुझे इस लायक ही समझा है क्या। और चलिए आपको इस लायक तो समझ लिया गया, और अगर आपको काम मिल ही नहीं रहा है तब तो आप पूरी तरह से नालायक ही समझे जा रहे हैं। आप किसी भी काम के लायक नहीं समझे जा रहे हैं। अगर उसको लायक और नालायक से जोड़ा जाए तो काम न होना फिर तो वही हो जाता है। दोस्तों हमारे यहां जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सीधे सीधे रोजगार से जुड़ी भी नहीं है। यहां तक जो जीवन में जो हम आनंद लेते हैं वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसको हमने रोजगार से जोड़ दिया है। मैं एमए पीएचडी हूं और अगर मुझे कहीं छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है या यूं कह लीजिए खेत में काम कर रहा है तो मैं जिंदगी में खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि सपने तो इस तरह से देख रखे हैं कि मैं एमए पीएचडी मैंने कर लिया है तो मैं बिल्कुल हार्वर्ड में जाकर के पढ़ाऊंगा और मैं कहां यहां खेत जोत रहा हूं। तो जब मेरे चाहने में और करने में इतना बड़ा फासला है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं खुश रह ही नहीं सकता चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना मिल जाए। दोस्तों ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिंदगी के बारे में, क्योंकि जो काम है मैं काम को सिर्फ पैसों से जोड़ करके नहीं देखता, एक आर्थिक आधार से जोड़कर नहीं देख पाता हूं। इनफैक्ट मैं काम को तो जीवन के केंद्र में देखता हूं, क्यों हमारे जीवन के केंद्र में है। और अगर जीवन का केंद्र ही गड़बड़ हो, चाहे उसका स्वरूप गड़बड़ हो, चाहे उसका स्वीकार्य गड़बड़ हो, चाहे जो भी हो, काम तो ठीक है लेकिन दिमाग के स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। पहले मैं किसी काम को चाहता था कि ये मुझे मिल जाए तो लगता था स्वर्ग मिल जाएगा, वो काम मिल गया। कुछ दिनों के बाद लगता है कि यार ये काम तो मिल गया लेकिन स्वर्ग कहां खो गया। अब स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं, जब स्वर्ग को ढूंढने लगे तो पता लगा कि वो तो उस काम में स्वर्ग है। चलो अब उसके लिए हाथ पैर मारो, इसको छोड़ करके इसमें मन नहीं लग रहा है, अब उसके लिए हाथ पैर मार रहे हैं, वो भी मिल गया। वहां गए तो फिर लगा कि यार ये तो गलती हो गई, मैंने कुछ गलत समझ लिया था, वो तो वहां है। बस पूरी जिंदगी स्वर्ग की तलाश में खत्म हो जाती है और जो कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए मित्रों मैं काम को एक बहुत विस्तार देकर देखता हूं, आप लोग भी इस पर थोड़ा सा सोचिए, मुझे अपने विचारों से अवगत भी कराइए, और हो सकता है कि आप सबके विचार जब मुझे मिलेंगे तो उसमें से फिर बात करने के लिए कुछ बिंदु भी मिल जाएं और हम फिर इस पर आगे भी चर्चा कर सकें। तो मित्रों अब आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।